नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषक मंच में आपका स्वागत है। मैं हूं ईश्वर चंद्रा। किसान भाइयों, कृषक मंच कार्यक्रम में हम आपको तरह तरह के पैदावार पर जानकारी देते आ रहे हैं। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं धान के बारे में। जी हां, धान आपके लिए एक प्रमुख फसल है। आप इसे गौर से सुने। और इस पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर एनके सिंह साहब, जो कि मुख्य वैज्ञानिक हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में धान के लिए। एनके सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और आज आप किसान भाइयों को धान के बारे में विस्तार से बताएं।
विश्व की आबादी का 60% से अधिक लोग को उच्च ऊर्जा युक्त भोजन चावल चाहिए। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया को आबादी भोजन के लिए चावल निर्भर है। चावल में 78% कार्बोहाइड्रेट, 6.7% प्रोटीन, 2 से 2.5% वसा एवं 0.6% विटामिन एवं खनिज पाए जाते हैं। चावल की कुटाई में विटामिन विशेषकर थायमिन नष्ट हो जाते हैं, जिसकी ज़रूरत कार्बोहाइड्रेट के पाचन के समय ऊर्जा विमुक्त कराने में होती है। जब हम लोग अरवा चावल खाते हैं तो उसके कार्बोहाइड्रेट के पाचन के समय दूसरे भोज्य पदार्थ का थायमिन उपयोग में आता है। इस कमी को पूरा करने हेतु जब धान को वाष्पीकृत कर चावल तैयार किया जाता है तब थायमिन नष्ट नहीं होता है। मनुष्य के भोजन के अलावे धान का पुआल मवेशी को खिलाया जाता है। चावल का टूट एवं ब्रान मुर्गी को भोजन के रूप में दिया जाता है। धान के भूसा का उपयोग बिजली पैदा करने में औद्योगिक स्तर पर किया जाता है। धान की उत्पत्ति स्थल क्या है? धान संसार के प्राचीनतम फसलों में एक है। इसकी खेती कृषि के प्रारंभिक काल से ही की जाती है। डी कंडोल 1886 के अनुसार वर्णित चीनी अभिलेख के अनुसार धान की खेती चीनी के लगभग 2800 वर्ष ईसा पूर्व से की जा रही है। टाकाहास 1967 के अनुसार पश्चिमी जापान में 1 शताब्दी पूर्व धान चीन से लाया गया था। पार्थ सारथी 1960 के अनुसार भारत में धान की खेती 300 ईसा पूर्व से शुरू हुई थी। धान की धार्मिक तथ्य क्या है? इसका महत्व क्या है? धान का वर्णन हिंदू धार्मिक एवं आयुर्वेद के पुरातन ग्रंथों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त वैदिक धार्मिक कृतियों में भी चावल का अक्षत के रूप में उपयोग इस भारत वर्ष में होता आया है। इसकी उद्भव क्या है? खेती योग्य धान के पौधे के उद्भव के बारे में कई धारणाएं प्रचलित हैं एवं इन सबों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है। धान के पौधे दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में बहुतायत रूप से पाए जाते हैं। अतः इस भूभाग का कोई देश या देशों का समूह धान का उद्भव स्थल हो सकता है। धान के उद्भव की संभावना पश्चिमी या दक्षिणी अफ्रीका भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ जंगली धान के पौधे बहुत पाए जाते हैं। चटर्जी 1951 के अनुसार ओराइजा साटिवा धान का उद्भव भारत का पूर्वी भाग हिंद चीन या चीन का क्षेत्र भी हो सकता है। इसके अनुकूलन के विषय में मैं बताना चाहूँगा। संसार में धान का उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। इसकी खेती 49 डिग्री उत्तर चेकोस्लोवाकिया से लेकर 35 डिग्री दक्षिण ऑस्ट्रेलिया तक किया जाता है। इसकी खेती फिलीपींस के समुद्र तल से लेकर भारत के कश्मीर घाटी में 5000 फीट की ऊंचाई तक की जाती है, जहां उच्च आर्द्रता, अधिक समय तक सूर्य की रोशनी एवं सिंचाई सुनिश्चित हो, वह जगह धान की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। अब मैं धान के तापमान की आवश्यकता क्या है इसके विषय में बताना चाहूँगा। धान की खेती के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम उपयुक्त माना गया है। धान में कल्ले निकलने के समय उच्च तापक्रम हो तो अच्छा माना जाता है। पुष्प निकलने के समय 26 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम चाहिए। दाना भरने के समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम का होना जरूरी है। मौसमीय वर्गीकरण क्या है? भारतवर्ष में धान की खेती मुख्यतः तीन मौसमों में की जाती है, अस, अमन एवं बोरो। अस की फसल मई जून से सितंबर अक्टूबर तक, अमन की फसल जून जुलाई से नवंबर दिसंबर तक एवं बोरो धान की खेती अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक की जाती है। अब मैं आपको इसके वानस्पतिक विवरण थोड़ा सा देना चाहूँगा। खेती योग्य धान का वानस्पतिक नाम ओराइजा साटिवा, इसका कुल ग्रैमिनी है। ओराइजा साटिवा की खेती एशिया में की जाती है, जो एक द्विगुणित जाति का है। इसमें गुणसूत्र, जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्रोमोजोम कहते हैं, 24 होते हैं और भौगोलिक वितरण एवं पादप रचना के आधार पर ओराइजा साटिवा को तीन भाग में बांटा गया है, इंडिका, जापोनिका एवं जावोनिका। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में उगाए जाने वाले परंपरागत लंबे एवं छिन्नकाय तना वाले धान, जो नेत्रजन के उपयोग पर बढ़कर गिर जाते हैं, वे इंडिका वर्ग में आते हैं। जापान, चीन, कोरिया एवं ठंडे देशों में उगाए जाने वाली धान, जिसके पौधे मजबूत, पत्तियां सकरी एवं हरी होती है, दाना छोटा, मोटा एवं चपटा होता है, वे जापोनिका वर्ग में आते हैं। और जावोनिका ग्रुप का धान इंडोनेशिया आदि देशों में उगाए जाते हैं। अब मैं धान के विकास पर प्री इंडिपेंडेंट एवं पोस्ट इंडिपेंडेंट का परिदृश्य देना चाहूँगा। भारतवर्ष में भयंकर अकाल पड़ने पर इसका विधिवत अध्ययन करने के लिए भारत सरकार ने अकाल आयोग एवं सिंचाई आयोग का गठन किया। दोनों आयोगों ने क्रमशः 1901 एवं 1903 ईस्वी में अपने अपने प्रतिवेदन जमा किए। इस प्रतिवेदन के आधार पर पूर्ण रूप से सुसंगठित प्रयोगशाला, प्रक्षेत्र एवं विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए एवं स्थानीय पशुओं के नस्ल सुधार के लिए पशु प्रक्षेत्र पूसा बिहार में खोला गया। इस कार्य को स्थूल रूप देने के लिए अमेरिका का रहने वाला श्री हेनरी फिप्स 30,000 पाउंड्स दान स्वरूप दिया था। अखंड भारत में सबसे पहले धान पर अनुसंधान कार्य का श्री गणेश 1911 ईस्वी में ढाका में शुरू हुआ। विधिवत रूप से धान के किस्मों का विकास, खाद एवं सिंचाई आधारित धान पर प्रयोग बिहार एवं उड़ीसा में 1914 ईस्वी में शुरू किया गया। ICAR की स्थापना 1929 ईस्वी में होने पर धान के अनुसंधान कार्य पर ध्यान केंद्रित किया गया। मुख्य रूप से धान अनुसंधान संस्थान सबौर में स्थित था, जहां प्रयोगशाला एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध थे। श्री एम आलम, डॉक्टर आर एच डिचारिया एवं श्री एस के राय आदि धान अभिजनक के रूप में यहाँ कार्यरत होकर बीआर श्रेणी के लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध किस्मों का विकास किए। ये किस्में न सिर्फ बिहार में बल्कि पड़ोसी राज्यों एवं देशों में भी प्रचलित हुआ। उसका उपकेंद्र रांची एवं कटक में खोला गया। बाद में छोटे छोटे उपकेंद्र सिपाया, गया, चाईवासा एवं संबलपुर में खोले गए। 1937 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा राज्यों के विभाजन के फलस्वरूप दोनों ही राज्यों में धान अनुसंधान इकाइयां खोली गई। अब मैं धान का विकास पोस्ट इंडिपेंडेंट का प्रदेश के बारे में बताऊंगा। भारतवर्ष के स्वतंत्र होने पर प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुआ। इसके बाद धान के अनुसंधान पर योजनाकृत तरीके से विशेष ध्यान दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय 1956-57 में क्षेत्रीय आधार पर चार क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पटना, सबौर, ढोली एवं रांची में खोले गए। ये चारों अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद धान अनुसंधान निर्देशालय की स्थापना 1965 ईस्वी में हैदराबाद में की गई एवं पटना को एक क्षेत्रीय केंद्र बनाया गया। इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हो जाने पर धान के विकास में लगे लोगों की संख्या बढ़ी और 3 दिसंबर 1970 को राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तब से धान अनुसंधान एवं धान विस्तार का कार्य विश्वविद्यालय द्वारा संपादित होने लगा। अब मैं बौने धान के विकास के विषय में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ताइवान में 1964 ईस्वी में टीएन1 का विकास हुआ। इस बीच डीओयूजेन नाम का बौने जीन का विकास किया गया और अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस द्वारा इस डीजीयूजेन को पेटा से हाइब्रिडाइजेशन करा कर के IR8 नाम का बौना धान का विकास किया गया। TN1 एवं IR8 को 1965 ईस्वी में बिहार में आगमन हुआ एवं दोनों प्रजातियों को शाहबाद जिला के प्रक्षेत्र पर डिमोस्ट्रेशन किया गया। इस बौना जीन का उपयोग कर पद्मा नाम धान की किस्म कटक से एवं जया नाम किस्म हैदराबाद से विकसित की गई। इंडिका जापोनिका हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम के तहत मलेशिया से मंसूरी नाम किस्म का विकास हुआ जो आज भी बिहार की नीची जमीन के लिए अनुशंसित है। इसके बाद इस बौना जीन के उपयोग द्वारा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के धान वैज्ञानिकों ने 2.5 दर्जन से अधिक धान की किस्मों का विकास किया है जिसे किस बिहार के भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि पर किसान भाई बड़े पैमाने पर लगाते हैं और उससे आज के तारीख में लाभ उठा रहे हैं। धन्यवाद।
तो किसान भाइयों, आपने धान के महत्व पर डॉक्टर इनके सिंह जी से आपने ये वार्ता सुनी। हम डॉक्टर साहब से आपके हित में आपकी तरफ से हम कुछ सवाल करेंगे और कुछ बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने पूरी दुनिया में धान का क्या महत्व है और साथ में धान के बारे में उनके उत्पत्ति से लेकर के और महत्व पर आपने प्रकाश डाला। बिहार में धान का बड़ा खासा महत्व है। पूरे देश में फूड कल्चर जो है, खाने की एक संस्कृति है, वो पूरे देश में अलग अलग है। बिहार में ज़्यादातर लोग चावल ही खाते हैं। बिहार के लोग बाहर भी जाएंगे, उन्हें चावल चाहिए और लगभग पूरे दिन भर में जो खाना खाते हैं उसका 60-70% जो भाग है वो चावल का ही होता है। तो बिहार में चावल का या फसल के रूप में धान का क्या महत्व है, इसे आप थोड़ा प्रकाश डाल दें।
ऐसा है, जो हमारे किसान भाई खेती करते हैं उनमें मुख्य फसल धान, गेहूं, मक्का का स्थान आता है। और किसानों को जो भोजन के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसके अनुसार वो ज़मीन का उपयोग करते हैं। आप जानते हैं कि धान की रिक्वायरमेंट किसानों के लिए ज़्यादा है, जैसा कि हरिचंद्र जी बताए 60-70% जो फूड आइटम चाहिए किसानों को, चावल के रूप में जो यूज करते हैं। तो जितनी धान की रकबा है वर्तमान में करीब 35 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर धान की खेती की जाती है। और ये धान की खेती भिन्न भिन्न तरह की ज़मीन पर की जाती है, जैसे ऊंची ज़मीन, मध्यम ज़मीन, नीची ज़मीन और डीप वाटर एरिया में भी धान की खेती की जाती है। जिस एरिया के किसान हैं और उनको चावल खाने के लिए, उनके परिवार के खाने के लिए चावल की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा उपज चाहेंगे। और जितना ज़मीन उनके पास है उसी ज़मीन पर अधिक उपज देने वाली, कम दिनों में अधिक उपज देने वाली धान की किस्मों का वो खोज करते हैं। और वो किस्म हमारे राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में धान पर अनुसंधान करने में जो वैज्ञानिक लगे हैं उनके द्वारा विकसित की गई हुई है। और इस तरह से उनको कम अवधि में ज़्यादा उपज देने वाली धान की किस्म उनको उपलब्ध है, और उस धान की किस्म को खेती करके और वो अधिक से अधिक धान पैदा करते हैं, ताकि उनके परिवार के जो 60-70% खाद्य पदार्थ चाहिए चावल के रूप में वो उनको उपलब्ध हो पाए। ये इसकी महत्ता है। धान का क्या स्थान होना चाहिए ये तो किसान भाई खुद महत्व समझते हैं।
तो किसान भाइयों, धान का महत्व आप खुद ही समझते हैं। धान है तो धन है कहा जाता है, क्योंकि आपके पास कई तरह के आप फसल उपजाते होंगे, लेकिन धान जो है फसलों का राजा भी है। जिस तरह आम जो है वो फलों का राजा है, तो धान को फसलों का राजा कह सकते हैं। क्योंकि अगर धान नहीं हुआ, सारे फसल हुए, धान नहीं हुआ, तो उसे हम कहते हैं वो साल जो है अकाल घोषित कर दिया जाता है। यानी इसी से आकलन किया जा सकता है कि धान का एक फसल के रूप में क्या महत्व है। हम एक और बात पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब की, जलवायु परिवर्तन का धान के ऊपर असर पड़ रहा है, लाजमी है, क्योंकि धान के लिए आपने जो उपयुक्त जलवायु आपने बताया कि जिस तरह का होना चाहिए, पानी उसके लिए उपयुक्त होनी चाहिए, तो अब जो है उपयुक्त जलवायु इसके लिए धीरे धीरे मिलना कम हो रहा है। तो एक जलवायु परिवर्तन का धान के उपज पर क्या असर पड़ रहा है, और साथ में आगे इसी तरह परिवर्तन जारी रहा तो धान को आप एक फसल के तौर पर उसका क्या भविष्य देखते हैं, उसका क्या एक वैकल्पिक उपाय आप आगे की ओर देख रहे हैं?
किसान भाइयों, अभी का जो परिदृश्य है, मौसम का कोई ठिकाना नहीं है, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी सुखाड़, कभी बाढ़, और ऐसे में किसान भाइयों को अपने भोजन के लिए तो खेती करना है। अब ऐसा है कि पहले वर्षा जो नॉर्मल हुआ करता था उस परिदृश्य में धान की खेती अलग अलग भूभाग पर की जाती थी और उसके लिए अलग अलग किस्मों का ज़रूरत पड़ता था। अभी इस साल भी और पिछले साल भी ऐसा देखा गया, बारिश बहुत ही कम हुई। औसतन 1200 मिलीमीटर बारिश अपने यहाँ बिहार में होती है, इस साल भी 600 से नीचे है, 600 मिलीमीटर से कम वर्षा हुई, और गत वर्ष भी 600 से कम ही वर्षा हुई थी, और पूरे बिहार को सूखा घोषित कर दिया गया है। ऐसे में धान वैज्ञानिकों की अहम भूमिका होती है कि सूखे की स्थिति में कौन सी धान की किस्म किसान लगाए जिसमें कम से कम पानी दे करके अधिक से अधिक उपज ले सके। हाँ, आपको पता होगी, यदि पता नहीं है अब तक तो आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगी राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से बहुत सारी ऐसी वैरायटी धान की जो विकसित की गई है, जो मात्र 90 से 95 दिन, 100 दिन, 110 दिन तक, कहने का तात्पर्य 3 महीना से लेकर 3.5 महीना में जिस किसान के पास 3 से 4 सिंचाई देने का साधन है, जो सिंचाई हम गेहूं में देते हैं 3 से 4, उतना ही सिंचाई यदि धान में भी दे करके और अच्छी उपज हासिल कर सके, वैसा किस्म आपके कृषि विश्वविद्यालय पूसा से निकाली जा चुकी है। आप निश्चित रूप से प्रभात की खेती करते होंगे, जो पूसा की एक किस्म है, नरेंद्र 97 जो फैजाबाद की किस्म है, पूसा 834 जो दिल्ली की एक किस्म है, ये सब 100 से कम दिनों में तैयार होती है। और इसको मात्र यदि आप बिल्कुल सूखा पड़ गया, 3 सिंचाई का यदि आपके पास साधन है, तो आप 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धान की उपज प्राप्त कर सकते हैं। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा गत साल 2009 में एक नई धान की किस्म राजेंद्र भगवती का विकास किया गया है, जो मात्र 110 से 15 दिनों में तैयार हो जाती है। और इसको भी कंप्लीट सूखा पड़ने पर 3 से 4 सिंचाई की साधन है, तो आप 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपज प्राप्त कर सकते हैं। इसका दाना पतला, लंबा और खुशबूदार होता है, इसके पुआल में भी खुशबू होता है। इस वैरायटी को पैदा करके आप तो स्वयं खुशबूदार चावल का भात बनाकर, खीर बनाकर, पुलाव बनाकर, बिरयानी बनाकर खा सकते हैं, आपके गाय भैंस भी खुशबूदार पुआल का टेस्ट ले सकता है। निश्चित रूप से आप भगवती लगावें और सूखा के चपेट से जान बचावें, यही मेरा आपसे सादर अनुरोध होगा
जी। तो किसान भाइयों, आपको डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर इनके सिंह साहब ने, कि आने वाले दिनों में इस तरह की किस्में जो है विकसित की जा रही है, डॉक्टर साहब उसमें लगे हुए हैं कि आप जो एक अनुकूल जलवायु चाहिए कि धान के लिए, अगर वो उसका अनुकूलन न भी मिले तो धान उसमें अच्छे से उपज आप ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में धान के महत्व पर आपने इतना विस्तार से जाना, अगले कार्यक्रम में भी धान के बारे में हम बताएंगे। आज के कृषक मंच कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें इजाज़त दें, नमस्कार।